नमस्कार, पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि के विशेष पेशकश के साथ मैं हूं बीके कोमल। आज उन रहस्यों से पर्दा उठेंगे जो सदियों से सवाल पूछ रहे हैं। आप उस सच से रूबरू होंगे जो हमारे उत्थान और पतन से संबंधित है। आखिर शिव से क्यों जुड़ा है रात्रि का संबंध? शिव की कथित बारात में क्यों शामिल होते हैं भूत और पिशाच? आखिर क्यों चढ़ाया जाता है शिव के ऊपर भांग, धतूरा, अग के फूल जैसी निरर्थक चीजें? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे। सबसे बड़े सवाल का भी उत्तर मिलेगा कि आखिर कैसे हो सकता है परमात्मा से शिव मिलन। इसके लिए हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में भी ले चलेंगे, जहां हमारे रिपोर्टर्स होंगे जो वहां के लोगों की राय जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वे लोग भी शिवरात्रि कैसे मनाते हैं। इसके लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे यहाँ विश्वानंद मुनि जी हैं महाराज, जो विश्व धर्म एकता के कोऑर्डिनेटर हैं, जो राजकोट गुजरात से हैं। डॉक्टर पुष्पा पांडे हैं, जो भागवत गीता की विद्वान हैं, जिन्होंने काफी शोध किया है। और तीसरे जो खास मेहमान हैं, बीके ब्रजमोहन जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव हैं और साथ ही तिरुटी मैगजीन के प्रधान संपादक भी हैं। इन तमाम सारे जो सवाल होंगे उनके उत्तर इन्हीं विद्वानों से ढूंढे जाएंगे और हम यह जानेंगे कि आखिर महाशिवरात्रि पर कैसे शिवरात्रि मनाया जाए, आखिर कैसे शिव से मिलन मनाया जाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि है क्या। महाशिवरात्रि परमात्मा शिव के रूप में मनाई जाती है दुनिया भर में। भारत में तो है ही, लेकिन नेपाल के साथ साथ पूरे विश्व में परमात्मा शिव की शिवरात्रि मनाई जाती है और लोग अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है यदि शिवरात्रि के पर्व पर अगर सच्चे दिल से परमात्मा की उपासना की जाए, परमात्मा शिव की उपासना की जाए, तो प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन जो लोगों के अनसुलझे सवाल हैं, लगातार लोगों के मन ही मन इसको ढूंढते रहते हैं कि आखिर इन सवालों का उत्तर क्या होगा। लोग पूजा करते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन ना तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं और ना ही उनके दर्शन होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आज हमारे इसी विशेष पेशकश पर हम तमाम जो हमारे साथ मेहमान उपस्थित हैं, इनसे हम एक एक करके जानेंगे कि क्या है इसका अर्थ और कैसे होगा इसका खुलासा। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे साथ विश्वानंद मुनि जी हैं। महाराज आप बताइए, आप तो तमाम भक्ति में कर्मकांड किए हैं, लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, भक्ति के साथ जुड़े रहे हैं, आखिर इन सवालों के जवाब या जो महाशिवरात्रि के सवाल के जवाब हैं, कहाँ विभेद पैदा करते हैं, कहाँ लोगों से दूर करते हैं और क्यों नहीं लोगों को जोड़ने देते हैं?
पुराण में भी महाशिवरात्रि के बारे में, शिव पुराण में भी ये बात रखी गई है। इस दिन रात्रि को शिव भगवान खुद ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसने खुद ने बताया कि इस दिन इस दुनिया में कोई भी मेरी पूजा करेगे सच्चे दिल से, तो मैं उसकी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। और इस समय पे ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिव भगवान ने विष्णु और ब्रह्मा को ओमकार का उपदेश दिया और वो रहस्य बताया कि इस सृष्टि पे, इस रात्रि पर कोई भी भक्त आत्मा मेरी पूजा करेगा तो उसको मैं अनेक गुना फल भी दूंगा। और अभी से मेरी जो पूजा करनी है तो लिंग के रूप में मेरी पूजा करनी है, वो भी उसने बताया।
आपको थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे महाराज जी। देखिए, तमाम लोग पूजा कर रहे हैं, सदियों से पूजा कर रहे हैं और लगातार हर तरीके से पूजा कर रहे हैं, जितना भक्ति में चलता है तमाम चीजें पद्धतियां, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं ये सवाल लोगों के बीच आज भी गूंज रहा है कि आखिर में क्या वजह है कि जो लोग या तो ना उस चीज को प्राप्त कर पाते हैं और ना ही कभी उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ये कहां भेद पैदा हो रहा है, आप क्या इसके बारे में कह सकते हैं?
हाँ जी, आगे से चली आती है और लोग करते हैं, लेकिन कामयाबी तो तब होगी जब उसका हृदय साफ होगा, जब वो विकारों से मुक्त होंगे। ऐसे भक्त आत्मा जब लगन से, तमन्ना से, एकदम प्यार से, जब आतुरता से उसको बुलाएंगे, पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, हृदय की बात रखेंगे, तब ही तो उसको प्राप्ति होगी।
पुष्पा जी, आप देखिए, चूंकि आप गीता में बहुत महारत हासिल है, आपको आपने काफी शोध किए, जहां तक सवाल आपका है, आपने कहा कि उसके लिए बहुत दिल से पुकारने की जरूरत है, दिल साफ करने की जरूरत है। गीता में भी कहीं न कहीं भगवान शिव के बारे में विवेचना मिलती है, तो आपको क्या लगता है कि जो मन के साफ करने का प्रोसेस है या जो मन को मन से पुकारने का प्रोसेस है, गीता में कहां इस चीज को क्लेरिफाई किया गया है कि नहीं, परमात्मा से अगर मिलना है तो उसके लिए करना पड़ेगा, और उसका क्या सिस्टम हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि इसके बारे में भी कहीं न कहीं फिल्ट्रेशन की जरूरत है?
नसी, जो गीता है वास्तव में एक महाभारत का एक पार्ट है। तो परमात्मा शिव का महत्व तो महाभारत में भी दिया हुआ है, कि आदि पर्व शुरू में दिया हुआ है महाभारत में भी, कि जब सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ, रचना हुई, तो उसमें परमात्मा शिव एक अंड रूप में प्रकट हुए, ये उसमें भी दिया है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी वैसे स्पष्ट शिव नाम तो नहीं दिया, लेकिन उनके जो पर्यायवाची जैसे भूत महेश्वर, इस तरह से कई सर्वेश्वर, इन नामों से उनको बताया गया है। कहीं भी गीता में श्री कृष्ण का नाम नहीं है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में कहीं नहीं है। और सचमुच परमात्मा शिव चूंकि भोलानाथ है, और उसको जानने से, उसको सही रूप में जानने से, और वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंच है। वैसे तो हमारा देश भारत आध्यात्म प्रधान देश है, हर दिन त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन ये जो परमात्मा शिव है ये सर्वोच्च है। ये महाभारत में भी शो हुआ है, क्योंकि जब श्री कृष्ण जब पांडवों के साथ जब वहाँ ले जा रहे थे,
हम आपको रोकना चाहेंगे। हाँ, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि परमात्मा शिव सर्वोच्च है,
यस,
जो गीता में अब तक की जो विवेचना मिलती है,
जी जी,
अब तक जो गीता के विद्वान के लोग हैं, अच्छा आपने शोध किया है, लेकिन कहीं न कहीं इस बात में भ्रम पैदा हुआ है कि कहीं न कहीं जो श्री कृष्ण का रूप है, जो उन्होंने कृष्ण को साक्षात्कार कराया, तो उन्होंने किस रूप में कराया, नहीं कराया, लेकिन इसको कैसे आप क्लेरिफाई करती हैं कि नहीं ये परमात्मा शिव सर्वोच्च हैं, और कैसे लोगों को बता, क्योंकि गीता में जो वर्णित है उसके अनुसार तो कहीं न कहीं इसमें उलझन है। आखिर में इस उलझन को कैसे आप लोगों के सामने रखेंगी या उनको क्लेरिफाई करेंगे कि नहीं मन की सफाई के लिए इन उलझनों को सुलझाना जरूरी है।
गीता में जैसे आपने कहा कि वहाँ फर्स्ट पर्सन में कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं श्री कृष्ण बोल रहा हूँ, या तो अर्जुन वाच में है या संजय वाच में है। तो ये स्पष्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो गीता जो सुनाई गई वो वास्तव में सर्वोच्च परमात्मा ने सुनाई, क्योंकि ये गीता में लिखा हुआ है अध्याय 8 में 9वें श्लोक में, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर्णयम अनुस्मरेद्यः। मतलब जो मैं हूँ, परमात्मा ने उसमें अपना परिचय दिया है कि मैं अणु से भी सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी ज्योति स्वरूप। अर्थात गीता जो सुनाई है वो वास्तव में परमात्मा ने सुनाई है, लेकिन चूंकि उसका लोग सही अर्थ नहीं जानते हैं, इसलिए गीता को भी लोग अपने जीवन में नहीं लाते हैं और वो कर्मकांड जैसे ही हो गया।
इन्हीं सवालों का जवाब हम जानते हैं, हमारे प्रातः ब्रजमोहन जी हैं। आप बताइए, जो कि ब्रह्मा कुमारी की फिलोसॉफी कहीं न कहीं गीता को इंगित करती है, जहां तक मुझे समझ है इस मामले में, कि परमात्मा शिव के बारे में जो क्लैरिफिकेशन, जो ज्ञान, जो समझ लोगों को दी जाती है, बिल्कुल कट टू कट दी जाती है। तो इसमें आप बताइए कि जो शिवरात्रि के संदर्भ में जो लोगों में दुराव पैदा हुआ, लोग अपने अपने तरीके से पूछते रहे, लोगों का दावा रहा, तो इस मामले में जो भेद पैदा हुआ, जो दुराव पैदा की स्थिति हुई, वो कहाँ से पैदा, आखिर कहाँ गायब हुआ, क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे? अगर किसी को सच में अगर भगवान से मिलना हो या शिवरात्रि मनाना हो, तो कौन सा प्रयास करे कि ये चीजें उसको स्पष्ट हो सके?
देखिए, आपने प्रश्न ये पूछा था कि मन की शुद्धि, स्वामी जी ने भी कहा कि आपने भी पूछा कि मन की शुद्धि इत्यादि का जो प्रक्रिया गीता में बताई गई है उसको कैसे गीता के साथ जोड़ा जाए और शिव के साथ जोड़ा जाए। पहली बात यह है कि गीता के भगवान ने कहा है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजि भव, कि मुझे याद करो, मेरे से मन को लगाओ, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। एक और जगह भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, कि मेरे शरण में आ जाओ। इन दोनों में ये बताया गया है कि परमात्मा कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरे में मन को लगाओ, और तभी आपका शुद्धिकरण होगा, सर्व पापों से मुक्त करूंगा। अब जो कैपिटल क्वेश्चन ये है कि कौन भगवान, जो गीता का भगवान, क्योंकि बहन जी ने कहा वो फर्स्ट पर्सन में है, हर जगह भगवानों वाच, और कोई दुनिया का ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवानों वाच हो और फर्स्ट पर्सन में हो, मैं कह रहा हूं मेरी शरण में आ जाओ, तो ये बात यहाँ तक आती है कि आखिर वो कौन है। अब आप देखिए यही कन्फ्यूजन है और इसी कारण से शुद्धिकरण नहीं हो पाता क्योंकि वो लगा नहीं पाते। और दूसरी जो शिव की बात की उसका भी इससे बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो किसी शरीर को याद करने के लिए तो भगवान ने कहा नहीं, बहन जी ने भी कहा, स्वामी जी ने भी कहा कि परमात्मा का ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप में लिंग इसलिए कहा गया है कि वो कोई सर्वव्यापिक ज्योति नहीं है, उसका कोई आकार है।
पर लिंग को भी तो लोगों ने जोड़ते रहे, जो संत थे, जो महात्मा थे, जिन्होंने भी जिनके पास गए वो कहीं ना कहीं जोड़ते रहे कि इनसे जुड़ जाओ, इनसे जुड़ जाओ।
आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अब प्रश्न ये है कि तीन चीजें हैं, अगर परमात्मा को याद करना है तो श्री कृष्ण जी तो थे, यानी वो आए शरीर धारण किया, हम कहेंगे श्री कृष्ण जी थे। परमात्मा तो हर वक्त है
जी।
तो परमात्मा का निराकार स्वरूप क्या है? जैसे मैं हूँ, मेरा ये शारीरिक रूप है, इसकी तो लिमिटेड अवधि है, लेकिन आत्मिक रूप से तो मैं शाश्वत हूँ। तो जब परमात्मा कहते मुझे याद करो, मैं तुम्हारे विकर्म विनाश करूंगा, तो उनका परम आत्म स्वरूप है। दूसरी बात कि आसानी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, श्री कृष्ण जी का नाम देवी देवताओं की श्रेणी में आता है, लॉर्ड कृष्णा कहा जाता है। उनके साथ श्री राधे जी दिखाए जाते शरीरधारी हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैं कभी शरीर धारण करके मनुष्यों की तरह कर्म में नहीं आता। तो सारे जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जिससे कंफ्यूजन पैदा होता है, उनमें वो कौन है जिसको परमात्मा नमः कह के पूजा की जाती है? तो आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर जी को तो वैसे महादेव कहते हैं, ब्रह्मा जी को आदि देव कहते हैं। केवल और केवल शिव है जिनकी वंदना पूजा ओम नमः शिवाय, ओम मैंने मैं आत्मा शिव को नमः करती हूँ, शिव परमात्मा नमः कहकर हो। इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता है कि शिव ही परमात्मा है जिनका लिंग रूप स्थापित भी है भारत में और उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जितने भारत के 8 मठ हैं। तो निराकार शिव, और वो गीता कहती है कि भगवान कहते हैं मुझे याद करो, तो परमात्मा का, या यूं कहें गीता के भगवान का निराकार स्वरूप ज्योति स्वरूप शिव है।
देखिए मुनि जी, जैसे आपने बहुत अपनी बात को बारीकी से इन्होंने रखा है कि जो पिंड रूप है, चाहे जो आंतरिक शुद्धिकरण की बात जैसे आपने उठाई है और आपने सवाल किया, और हमारे तमाम दर्शकों के भी ये सवाल है कि आंतरिक शुद्धि की जो बात इन्होंने कही है कि उसके लिए परमात्मा ने कहा कि मेरे साथ जुड़ो, जो आपने बिल्कुल कहा, इसमें कहां कंफ्यूजन पैदा होता है कि लोग जुड़ नहीं पाते हैं आपके ध्येय से, आपके नजरिए से? क्योंकि आप लोग तो तमाम जोड़ते ही लोगों को आए, जब से पूजा पाठ कर्मकांड शुरू हुआ कहीं ना कहीं रूप से आप लोगों ने जोड़ते आए, जोड़ते रहे, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं जुड़े, तो उसका महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है?
परम आत्मा शिव जो है उसका अगर रियल अर्थ में परिचय न दिया जाए, उसकी पहचान रियल अर्थ में उसको रिकॉग्नाइज जब न की जाए, रियलाइजेशन उसको न मिले कि वो कहाँ है, कैसा है और वो क्या करता है और हम उसके साथ कैसे संबंध जोड़ सके, वो अगर वो सही तरीके से भक्त लोगों को जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक उसके साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, और जब तक संबंध नहीं जुटेगा तब तक तो प्राप्ति कैसे होगी?
नहीं तो
उसका सही परिचय देना बहुत जरूरी है।
पुष्पा जी जैसे बताइए कि सॉरी, आप जैसे कह रहे हैं कि उनके साथ संबंध जुड़ा, ज्ञान नहीं दिया जाए, तो दुनिया में तमाम लोगों ने ज्ञान ही तो दिया है, अपने अपने रूप से दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर जुड़ाव नहीं हुआ है तो क्या माना जाए? ज्ञान की प्रक्रिया देने की गलत है या सही ज्ञान नहीं है? इसके संदर्भ में अगर गीता में कुछ है तो आप बताइए कि इसका क्या हो सकता है?
वैसे दुनिया में सच में ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वो जो सारे ज्ञान है वो मनुष्यों ने दिए हैं, तो जो मनुष्य मत है उसके आधार पर पूरा शुद्धिकरण नहीं हो सकता। और लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो सत्य ज्ञान है वो परमात्मा देता है, और गीता में लिखा हुआ है।
तो आप कैसे मान सकती हैं कि ये मनुष्य मत नहीं, ये परमात्मा का मत है? क्योंकि जो शास्त्र में लिखा, लोग शास्त्रों के हिसाब से देते हैं, और वो जो पढ़ते हैं, अब उसको आप मनुष्य मत कह लीजिए, या अगर कोई माने तो देव, नहीं तो माने तो पत्थर, अब कोई उसको ईश्वर मत कह लेता और आप कह रहे हैं कि मनुष्य मत है। तो ये मनुष्य मत और ईश्वर मत की जो विवेचना है, इसको आप स्पष्ट कीजिए कि अगर किसी को ज्ञान देना है या अगर किसी को जोड़ना है, तो ये मनुष्य मत और ईश्वर मत की विवेचना का कैसे डिफाइन हो सकता है? कैसे ये माना जाए कि ये मनुष्य मत है, ये ईश्वरी मत है, ये ज्ञान मत?
जैसे जो शास्त्र भी लिखे हैं, तो शास्त्र जो लिखे उसमें भी एक सूक्ष्म अर्थ है, लेकिन लोगों ने क्या किया है कि स्थूल बुद्धि का प्रयोग किया और जो उसमें जो स्थूल चीजें लिखी हैं उसको उसके अनुसार ही शाब्दिक अर्थ में ले लिया। जैसे गीता में ही आप देख लीजिए, गीता में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और आज इतनी हजारों गीताएं हैं और सब में लोगों ने मनुष्य मत के आधार पर उसका अपना वर्णन किया और इसी कारण लोग कंफ्यूज रहते हैं।
तो
कि वास्तव
क्या
में
मतलब
गीता है
कि जो गीता अभी है और जो मनुष्य मत के आधार पर बड़ी हुई है, या गीता का प्रारूप कुछ और हो सकता है? आपके कहने का अर्थ क्या है?
अवश्य ही, जो गीता जो प्रारंभ में लिखी गई थी उसका स्वरूप कुछ और था और आज उसका स्वरूप कुछ और हो गया है। जैसे आप महाभारत में ही देख लीजिए कि जो भीष्म पर्व के 25 से 42वें जो अध्याय उससे लिया गया है, उसमें लिखा है कि 700 श्लोक हैं और उसके नेक्स्ट बात अगले ही अध्याय में 43 उसमें लिखा कि 745 श्लोक हैं। तो आप देख लीजिए उसमें ही इतना चेंज आ गया है।
चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सीधे हम दिल्ली के लोगों की राय जानेंगे कि हमारे वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं, वहाँ की देखिए दिल्ली के लोग क्या कहते हैं इस मामले में, क्योंकि हमारी सहयोगी वहाँ पे पूजा हैं और दिल्ली से क्या लोगों की विवेचना इस मामले में शिवरात्रि के बारे में, आप देखते हैं उनकी रिपोर्ट।
जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं शिवरात्रि के पावन अवसर की। भारत की राजधानी दिल्ली में शिवरात्रि का पर्व कैसे मनाया जाता है, यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से मैं जानकारी लेना चाहूंगी। शिवरात्रि में हम लोग शिवलिंग पर धतूरे का अर्घ चढ़ाते हैं, दूध डालते हैं, उन सबका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएं।
उनका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जिस तरह से भक्ति में हम अभी तक अर्घ धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन परमात्मा को अर्घ वो नहीं चाहिए, परमात्मा को हमारी बुराइयां चाहिए, तो हम अपनी बुराइयों का दान करते हैं। जिस तरह शिवलिंग पर 3 लकीरें दिखाई जाती हैं, जिस तरह इसका मतलब ये कि परमात्मा जो है रचना भी करते हैं, विनाश करवाते हैं और नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं, और जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं अपना तन मन धन से परमात्मा पर समर्पित होते हैं, और जो हम दूध चढ़ाते हैं ये दूध हमारी प्योरिटी का है। ये दूध में आपने देखा होगा पानी ज्यादा होता है और दूध कम होता है, ये हमारी प्योरिटी है कि हम कितना परसेंट परमात्मा पर अब अपना वो कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। तो हम इस बार शिवरात्रि पे हमारा व्रत यही है कि हम अपनी बुराइयों का ध्यान परमात्मा को देंगे। यही फर्क है कि हम पहले भक्ति में कैसे शिवरात्रि में आते थे, स्कूल में चीज दे देते थे लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं करते थे, सिर्फ कहते थे। तो यही हम आध्यात्मिक तरीके से अब लगता है कि सच्ची शिवरात्रि हम अब मना रहे हैं जो परमात्मा हमसे चाहते हैं।
बेलपत्र चढ़ाते हैं क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश रहते हैं, 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का सारा है। और हम लोग उपवास भी करते हैं और रात भर शिवरात्रि में रात भर जागरण भी करते हैं, जागरण करते हैं, भजन गाते हैं और शिव जी का पूजा करते हैं।
देखिए, जिस तरीके से लोगों ने अपने विवेचना में कहा है, अभी जिस तरीके से दिल्ली के लोगों का फीडबैक, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम मंदिरों में जाते हैं, शिवरात्रि के दिन पूजा कर लेते हैं, चढ़ा लेते हैं, लेकिन ये सवाल लगातार उनको परेशान कर रहा है अभी भी, जैसे कि नहीं हम चढ़ा के तो चले आते हैं, शिवरात्रि के दिन चढ़ा लेते हैं और बहुत समय से चढ़ा के आ रहे हैं और बहुत मान्यता मान के आ रहे हैं हमको लोगों ने कहा। आप बताइए कि अगर शिवरात्रि अगर किसी को मनानी है, अगर भांग धतूरा उसको चढ़ाना है या क्या करना, कैसे वो शिवरात्रि मनाए जिससे उसको लगे कि नहीं हाँ मैंने सच्चे दिल से या सही तरीके से मैं शिवरात्रि मना के आ रहा हूँ और मेरे अंदर आत्मसंतुष्टि हो रही है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है?
देखिए, इसके दो रूप हैं। एक तो ये है, आप बार बार कह रहे हैं सच्चे मन से, शुद्ध मन से, तो ऐसा नहीं है कि भगवान बिल्कुल सच्चे मन वाले को ही मिलता है। वास्तव में परमात्मा का नाम है पतित पावन, उसका कर्तव्य अगर एक शब्द में कहा जाए परमात्मा क्या करते हैं तो पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही मिलेंगे जो पावन करेंगे। तो यहाँ भी एक कंफ्यूजन है क्योंकि लोग ये समझने लग गए मैं पावन बनूंगा तब शिव मिलेगा, तो पावन कैसे बनूंगा तो वो फिर हजार तरीके करते हैं, गंगा स्नान करेंगे, दान पुण्य यज्ञ तप आदि आदि करते हैं कि हम पावन बन जाएं तब भगवान से मिलेंगे। ये उसी प्रकार है कि मुझे कोई रोग है तो कि मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं डॉक्टर से मिलूंगा, इस तरह का कन्फ्यूजन है। अब पावन बनने के लिए वो जितने उपाय करते हैं गीता में उन सब का निषेध है। भगवान आए, उन्होंने देखा होगा जब भगवान शिव आए कि देखो मेरे बच्चे, मुझे मैंने तो कहा था कि मेरे मनमना भव हो जाओ, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वेद अध्ययन यज्ञ दान क्रियाएं कर रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से आज की उपलब्ध गीता में भी इसका निषेध है। इसलिए ये बात एक तो ये है। दूसरी बात कि भगवान ये भी कहते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि जो जिस रूप से भी मुझे याद करता है मैं उसकी भावना सच्चे दिल से पूरी करता हूँ। अब इसका मतलब ये निकलता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति को सच्चे शिव का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो समझता है कि श्री कृष्ण भगवान है या श्री राम भगवान है या एक पत्थर को ही भगवान मानता है, लेकिन वो सच्चे दिल से क्योंकि याद तो उसको कर रहा है तो उसको तो पता नहीं भगवान कौन है, पर परमात्मा तो देख रहा है कि मेरे को सच्चे दिल से याद। तो एक तो ये एंगल है कि सच्चे दिल से और जिस भावना से, एक होता है परमात्मा का परम पिता का हमें इनहेरिटेंस मिले एज ए आत्मा, लेकिन एक बच्चा जैसे होता है पिताजी हैं करोड़पति, बच्चा कहता है मुझे लॉलीपॉप ले दो, उसमें खुश है, उस प्रकार की अल्पकालिक भावना भगवान पूरी कर देता है, उसमें सच्चे दिल से करे, फॉर्मेलिटी नहीं करे। ये बात। दूसरी बात ये है कि सच्चा शिव कौन है, सच्ची शिवरात्रि कैसे मनाई जाए, ये एक जरा गहरा और डिटेल्ड प्रश्न है, क्योंकि गीता के अंदर ये तो कहा गया, आपने बहन जी से पूछा था कि भी कैसे माने कि मनुष्य की है रचना
जी।
तो जो आज उपलब्ध ग्रंथ है वो तो जरूर किसी न किसी ऋषि ने लिखा है और लोग जानते हैं, वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया, लेकिन जो लिपिबद्ध किया है भगवानों वाच, लेकिन वो जो भगवान ने वाच किया था, आखिरकार परमात्मा ही दुनिया को सत्य ज्ञान दे सकते हैं और इसीलिए भगवानों वाच शब्द उसमें आया, लेकिन जब उन्होंने किया था, जिस रूप में किया था, जिस तरीके से किया था, जो शुद्धिकरण का तरीका बताया था, वो सारा उस लेखक ने एक लिखने के रूप में के लोगों की समझ में आए, तो उसमें सारा परिवर्तन है। मिसाल के तौर पे भगवान आए, अब गीता में ही भगवान ने कहा हुआ कि मैं परमात्मा मनुष्यों की तरह शरीर धारण नहीं करता हूँ, माता से गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। दूसरे शब्दों में दो शब्द हैं, एक अवतार और एक जन्म। सारे दुनिया के लोग, चाहे वो महात्मा है देव आत्मा है, जिन्होंने शरीर लिया वो जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे से जन्म लेते, और परमात्मा कहते हैं मैं जन्म नहीं लेता हूँ, किसको माता पिता कहूँ, मैं तो सब, तो मैं अवतरित होता हूँ। तो गीता को पढ़ते हैं लोग, लेकिन कहीं उनको क्लियर नहीं होता कि परमात्मा किस विधि से अवतार लेते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया है कि श्री कृष्ण जी के शारीरिक लौकिक जन्म को ऐसा रूप दिखाया है जो लगे कि अलौकिक है, अर्थात ये ताले खुल गए और वो उनको ले गए, जमुना चढ़ी हुई थी तो उसने सांप ने टू मेक इट सुपर नेचुरल। लेकिन कुछ भी कर लो, फैक्ट तो ये रहता कि उन्होंने जन्म लिया था, तो जन्म परमात्मा तो जन्म नहीं लेते, इसलिए वो एक लेखक ने जितना उसकी बुद्धि चलती थी उस रूप से जो कुछ लिखा है। मान लीजिए भगवान उन्होंने दिखाया रथ में बैठे हैं, अर्जुन के रथ में बैठे हैं, अब भगवान कहते हैं मैं शरीर रूपी रथ में अवतरित होता हूँ क्योंकि मेरा अपना शरीर नहीं है भागीरथ में, तो सारी बात गीता के अवतरण का तरीका, भगवान का समय आदि सब बदला हुआ, इस वजह से लोग कन्फ्यूज है।
देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी जो सामने आया है कि भगवान की आराधना के बारे में आपने बहुत बारीकी से रखा और इसमें बहुत दो तीन सवाल जो निकल के सामने आए हैं, ये है कि जो जिस रूप में भगवान को पूजता है, चाहे राम या कृष्ण जिसमें भी रूप में, उसको अल्पकाल की प्राप्ति मिलती है, लेकिन लगातार ये सवाल अब और बड़े होते जा रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर वो पूजा कर रहे हैं उनको थोड़ी प्राप्ति हो गई तो लगता है कि उनको भगवान को गए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
मधुबन।
इस विशेष पेशकश में आपका फिर से स्वागत है और हम बात उस मुद्दे पर वापस चलेंगे कि जिस तरीके से हम लोग का डिबेट चल रहा था कि नहीं परमात्मा से शुद्धिकरण, फिर उसके बाद भगवान से आराधना की बात, सच्चे मन से बात, और जो आपने स्पष्ट रखा, अब जो सवाल ये है शिवरात्रि के मुद्दे पर हम वापस आते हैं कि जन्म मरण, जैसे आपने कहा कि परमात्मा जन्म लेते ही नहीं, अब तक जो शास्त्रों में बातें हैं कहीं न कहीं इसको दिग्भ्रमित करती रही हैं कि परमात्मा का अवतरण होता है, फिर कहा जाता है परमात्मा का जन्म होता है। ये जन्म मरण और परमात्मा का अवतरण, इसमें आप लोग स्पष्ट करें कि ये क्या है, सचमुच अवतरण होता है तो अवतरण का मतलब क्या है, और अगर जन्म होता है तो जन्म किसका होता है, क्योंकि ये तमाम सवाल जो है लोगों को उलझा के रखे हैं। आज भी जो हमारे जो सवाल हमारे पास है इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि परमात्मा इस धरती पर आएंगे, जन्म लेंगे, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि अभी निकल गया कि अवतरण होगा। तो अवतरण और जन्म मरण, ये इसमें क्या सही है कि ये माना जाए कि नहीं परमात्मा का अवतरण होता है या जन्म होता है?
समय समय प्रति इस दुनिया को थमाए रखने के लिए, इस दुनिया को आनंद भरा और हरा भरा रखने के लिए जो परमात्मा है, जो कभी मनुष्य अवतार धारण नहीं करते है, उसी की योजना से वो ऐसे आत्मा को मनुष्य शरीर धारण करवाकर इस दुनिया में भेजते हैं, उसको भगवान कहा जाता है। शरीरधारी मनुष्य वैसे भगवान के रूप में अच्छे काम करते हैं, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, पूजते हैं आगे जाके, उसको भगवान कहा जाता है। और जो मनुष्य शरीर माँ के उदर में जाके जन्म नहीं लेता है, लेकिन वो ऐसी पवित्र कोई आत्मा, ऐसे कोई पवित्र व्यक्ति जो कहीं साधना उपासना भक्ति करके वो पवित्र हो चुकी है, उसका शरीर का आधार लेके जो परमात्मा जो सुप्रीम पावर जो है, सर्वोच्च सत्ताधीश है, वो मनुष्य शरीर का आधार लेके कुछ न कुछ कल्याणकारी बातें रखते हैं, उसको अवतरण बोलते हैं।
स्पष्ट करें आप लोग की जो बातें चल रही हैं इसमें।
वास्तव में परमात्मा का जो गीता में लिखा हुआ है कि अध्याय 4 में 6वें श्लोक में कि मैं अजन्मा हूँ, और उसके जस्ट बाद फिर लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मुझे आना पड़ता है धर्म की स्थापना के लिए, और उसमें ये भी बताया कि मैं क्यों आता हूँ। लेकिन उसके जस्ट बाद और जो श्लोक में लिखा है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेदि तत्त्वतः, अर्थात मेरा जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य है, और जो इसको तत्व सहित जान लेता है। कहने का अर्थ कि एक तरफ लिखा है परमात्मा अजन्मा है और दूसरी तरफ लिखा है कि मेरा दिव्य जन्म होता है, तो कहने का अर्थ कि जो अजन्मा परमात्मा है, क्योंकि शिव परमात्मा उसका कोई शरीर नहीं है इसीलिए वो अजन्मा है, लेकिन उसको आकर सत्य ज्ञान सुनाना है, और तभी शिवरात्रि तभी मानी जाएगी जब उसके ज्ञान को, ये जो अंधकार है, जो अज्ञान अंधकार है, उस समय परमात्मा का अवतरण होता है, दिव्य जन्म को ही इसमें अवतरण कहेंगे।
आप बताइए, देखिए इन्होंने बहुत एक तरीके से एक नया चीज दे दिया कि परमात्मा का अज्ञान अंधकार में अवतरण होता है, आपने गीता के साथ
ऐसा है
वो, आप इसको,
ये दो चीजें इसमें मिक्स हो रही हैं। एक है परमात्मा के धरती पर आने की विधि
जी,
और दूसरा है समय। तो क्योंकि हम शिव रात्रि कहते हैं तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रात्रि क्यों कहते हैं, भगवान रात्रि में क्यों आते हैं,
रात्रि में क्यों आते हैं ना, या और ये कौन सी रात्रि है,
और हाँ, तो इसलिए ये एक बहुत डिफरेंट विषय है, क्योंकि वो समय का द्योतक है, दिन और रात। यानी कहा जाता है भगवान ये ज्ञान पहले सूर्य ने दिया था इत्यादि इत्यादि, तो वो अंधकार जो है वो अज्ञान का द्योतक है, ये तो क्लियर है। तीन तरह की रात्रि हमारे यहाँ मनाई जाती है,
अज्ञान में थोड़ा सा और आप क्लियर करें।
तीन तरह की रात्रि मनाई जाती है, एक तो देवियों की रात्रि मनाते हैं, जगराता करते हैं, माँ माँ करते हैं, एक ब्रह्मा की रात्रि का वर्णन है और एक शिव की रात्रि, इनका आपस में लिंक है, पर वो लंबा विषय है। तो रात्रि का मतलब क्या है, अज्ञान अंधकार। अज्ञान किसको कहते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। सारे लोग शास्त्र पढ़ने वाले तरह तरह के, वो अपने को ज्ञानी ही कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको अपने अपने अनुसार ज्ञान है। पर आपने शायद स्कूल में बच्चों की अंधों ने हाथी देखा वाली कहानी सुनी होगी, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, कोई हाथी को आपने पढ़ी होगी, कभी हाथी को फैन की तरह गिना तो किसी ने कान पकड़ा हुआ है, रस्सी की तरह गिना किसी ने पूछ पकड़ा हुआ है, पांव को पकड़ा तो स्तंभ की तरह समझा, और किसी ने पेट पे हाथ लगाया तो उसको समझा कि ये फ्लैट वॉल है, किसी ने सूंड को हाथ लगाया वगैरह। कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, किंतु उनको पूर्ण हाथी का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो हाथी को देख नहीं सकते। तो बेसिक क्वेश्चन ये है, क्या कोई भी मनुष्य आत्मा परमपिता परमात्मा को जान सकती है? बेसिक क्वेश्चन ये है, क्योंकि कहा जाता है आत्माएं अल्पज्ञ हैं और परमात्मा सर्वज्ञ है। तो परमात्मा तो सब कुछ जानता है, परंतु हम तो अपने पिछले जन्म को भी नहीं जानते, हम और आप क्या जाने कि कल हमारा क्या होगा। तो जब हमारी ये दिशा है, तो पूर्व काल में बहुत सारे ऋषियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर रिसर्च किया, भगवान कौन है। तो आखिरकार उन्होंने बाई दी मेथड ऑफ डिडक्शन, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, उसके करेक्टरिस्टिक देकर नेति नेति करके फाइनली ये फैसला किया था कि परमात्मा की गति और मति मनुष्य आत्मा की बियॉन्ड कंसेप्शन है। अगर परमात्मा को कोई भी जानना है तो खुद आके बता सकते, ये फाइनल डिसीजन हुआ था। अब उस हिसाब से अगर आप देखें तो जिसको आप अज्ञान कहते हैं, वो उसका मेन कारण ये है कि हैं सब ज्ञानी, परंतु फिर भी जिस चीज को वो पाना चाहते हैं उसका ज्ञान नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि बीच बीच में जब जैसे दुनिया को ठीक रखने के लिए आते हैं, जिनको लोग भगवान कहते हैं, और धर्म के लोग उनको मैसेंजर कहते हैं, तो परमात्मा का पैगाम लेके आए पैगंबर कहते हैं। तो इसमें दो बातें हैं, दुनिया पहला असूल ये है, स्पिरिचुअल लॉ है वैसे भी, कि हर चीज नई से पुरानी होती है, उसका पुराना होने को कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ऐसी दुनिया की चीज नहीं है, हम और आप हैं। हम लाख कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर ही हों, बहन जी डॉक्टर हैं, तो आप शरीर के पुराने होने को नहीं रोक सकते, केवल आप जरा ध्यान रखेंगे तो देर से पुराना होगा। इसी प्रकार से ये सृष्टि है, ये बिल्डिंग है, हर चीज ने पुरानी होना है। तो जब गीता के भगवान ने कहा यदा यदाय धर्मस्य ग्लानिर मैं फिर आऊंगा, तो वो त्रिकालदर्शी हैं शिव, उन्होंने कहा कि मैं बना के जा रहा हूं, लेकिन कुछ भी कर लो एक दिन वो फिर आएगा कि ये नई पुरानी होगी, फिर मुझे ही बनाना है। तो दो बातें हैं, एक है दुनिया की टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, पुरानी को नई बनाना, वो तो परमात्मा के हाथ में है, और एक उसका मेंटेनेंस है, रिपेयर है, वो मनुष्यात्मा महान आत्मा।
बहुत बढ़िया सवाल, एक मेंटेनेंसर और एक है
टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो शिव करते हैं और बाकी दूसरे करते हैं, तो लोगों ने तो दोनों को ही मान देना है, तो इसलिए उन्होंने उनको एक
आप लोग कितना सहमत हैं कि एक रिपेयरेशन रिपेयर का है और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का? तो क्या जो अज्ञानता की, जो शिवरात्रि के अंधकार की बात हो रही थी, इसके संदर्भ में फिलहाल आप बताएं कि आप इनसे कितना सहमत हैं, और क्या वो सच में वही समय है ये?
हम संपूर्णतः ब्रिजमोहन भाई के साथ सहमत है, क्योंकि उसने बहुत क्लियरिटी से बताया कि ये रिपेयर्स है, उसकी भी वैल्यू है, लेकिन लोग उसको ही सर्वस्व मान के वहां रुक जाते हैं। ये द्विधा है, जो रिपेयरर्स मैसेंजर्स आते हैं उसके पास रुक जाते हैं।
आप क्या सोचते हैं इसे?
हाँ, यह बिल्कुल सही बात है कि लोग क्या है, धर्म स्थापक आत्माओं में ही उनको ही परमात्मा मानने लगे, तो परमात्मा को भूल गए। और जिसने वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म किया, जिसने इस सुंदर दुनिया का निर्माण किया और इस अंधकार को हटाया, उसको लोग भूल गए। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अब समय जरूर आ गया है कि ये रहस्य को सबको मालूम होना चाहिए।
देखिए, अब इस पर हम चलते हैं मुंबई के लोगों की राय, देखते हैं कि मुंबई के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमारी वहाँ पर सहयोगी एक रिपोर्ट दे रही है।
हाँ, शिवरात्रि जो है, हम सवेरे उठते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, और फिर मंदिर जा करके दूध और पूजा उजा बेलपत्र वो वगैरह सब चढ़ाते हैं, और सारा दिन भर हम लोग भूखे रहते हैं, और फिर शाम को पूजा करके तब 12 बजे के बाद फिर हम कुछ खाते। शिवरात्रि शंकर भगवान के नाम से हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। जिस दिन हम लोग शंकर जी को जा करके मंदिर में दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल वगैरह सभी चीजें चढ़ाते हैं, और हम लोग उसमें धतूरा है और भी बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं,
और उसके बाद हम लोग व्रत रहते हैं, घर पे आकर के फिर प्रसाद वगैरह लेते हैं, लोगों में बांटते हैं। शंकर जी का जन्म के रूप में, विवाह के रूप में हम लोग सब।
देखिए, जो लोग मुंबई भागम भाग की दौड़ है, वहाँ के लोगों का जो फीडबैक है, वो लोग भी कहीं न कहीं इन बातों से सहमत हो रहे, लेकिन जो उनके लिए दुविधा है कि वो लोग कह रहे हैं कि अब भौतिकता की, चूंकि वो भौतिकता की आदि, तो वो उसमें उनको ये विवेक नहीं उनका काम कर रहा है कि ये पुरानी कैसे हो गई, या रात्रि अज्ञान रात्रि जो शिवरात्रि के बारे में है, एक नया चीज सामने आई है लोगों के। तो इसको आप बताएं आप लोग कि जो ये वर्तमान दौर है, इस वर्तमान दौर में रात्रि और अज्ञानता, इसको बिल्कुल क्लियर करके आप लोग बताएं कि अज्ञानता क्या है और कैसे लोग यह समझ पाएं कि ना सचमुच यह अज्ञानता की रात्रि है, जो भगवान आ सकता है या आया हुआ है या आएगा।
देखिए, एक बात पिछली बात को कंटिन्यू करते हुए कि परमात्मा एक बीज की तरह है
जी।
वो कहते भी हैं कि सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है, जिसका मैं बीज परमात्मा उल्टा इसलिए कहा गया कि उन परम धाम में ऊपर रहते हैं। तो बीज की उत्पत्ति, बीज की आवश्यकता जब पड़ती है, जब वृक्ष शुरू होता है और उसके बाद बीज लुप्त हो जाता है, जब वृक्ष सूख जाता है दोबारा उसको उत्पन्न होना होता है, तो बीज लगता है। तो परमात्मा का कर्तव्य जो यदा यदा है, इसका ये अर्थ नहीं है कि यदा यदा मीन हर वक्त, लेकिन वंस फॉर ऑल, कि जब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है तो आते हैं। अब आपने अज्ञान कहा तो गीता के अंदर दो बातें हैं। एक तो यदि किसी ने शुद्धिकरण करना हो, शिव को जानना हो, तो फर्स्ट है ज्ञान
जी।
और उसके बाद उस ज्ञान को धारण करने के लिए शुद्धिकरण, क्योंकि आपको ज्ञान मिल भी गया, वैज्ञानिकों को ज्ञान मिलता है। अब उसको दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं और रिएक्टर भी बना सकते हैं, बिजली भी पैदा कर सकते हैं। तो ज्ञान दो धारी तलवार है, इसलिए गीता के अंदर शुरू में ही भगवान ने सत्य ज्ञान जो दिया, जिसको कहते हैं ट्रूथ
जी,
वो ये दिया फर्स्ट कि तुम आत्मा हो, हे अर्जुन तुम आत्मा हो, आत्मा शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कट नहीं सकती। अब ये फर्स्ट ज्ञान है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते कि जब उसको आत्मा कह रहे हैं भगवान, तो खुद को तो श्री कृष्ण शरीरधारी नहीं कहेंगे, खुद को भी परम आत्मा के रूप से परिचय देंगे। एक है ये ज्ञान। अब आत्मा भी मैं हो गया, लेकिन विकार भी आत्मा में ही है, अशुद्धि भी, जिसको आप अंधकार कहते हैं। तो गीता में साफ साफ कहा हुआ है कि तीन बड़े नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ लिखा हुआ है, और काम महाशत्रु है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। और ये तीन बड़े नरक के द्वार, जैसे आपने भौतिकता कहा, ये इस अज्ञान से पैदा हो जाते हैं। जो ही आपने आत्मा नहीं समझा, शरीर समझा, तो आपको बाहर की चीजें दिखाई देगी, आप सुख के साधनों को सुख मानने लग जाएंगे, हालांकि वो साधन है, भौतिक साधन है, उसको यूज करने के लिए आत्मिक शक्ति चाहिए। तो ये जो अज्ञान अंधकार आज फैला हुआ है, लोग शिव के पास किसी रूप में भी जाए तो क्या मांगते हैं, वो कोई ये नहीं मांगते कि मेरी आत्मा की शुद्धि हो जाए, मेरे निर्विकारी बन जाऊं, वो ये मांगते हैं मुझे ये दे दो भगवान, ये दे दो हैं, पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्मान भव, ऐसी चीजें मांगते हैं। इसलिए इसको अज्ञान कहा जाता है कि फर्स्ट अज्ञान, जिससे सारे ज्ञान पैदा होते हैं, वो ये है अपने को, मैं को आत्मा ना मानकर जो मैं हूँ बॉडी मानना, जो कि नश्वर है, फिर ये सारा चीजें गलत हो जाती।
देखिए, तो बहुत सही आपने कह दिया कि नहीं आत्मा, परमात्मा ने कहा कि आत्मा मानो तो आप में सब होगा, लेकिन ये बताइए कि लोग तो अपने को शरीर ही मानते हैं और शरीर मान के ही जो करते हैं वो कहते हैं कि सब कुछ यही सही है, तो और क्या इसके सिम्टम हैं और क्या निशानी है कि जब आदमी मनुष्य मान के, शरीर मान के काम करता है, तो उसके जो रिजल्ट्स आप लोग बताएं कि आप लोग तो चूंकि पूरी दुनिया में कर्म कांड में हर चीजों में रहते हैं, तो कैसे लोगों को ही बताएंगे कि जो तुम कर रहे हो शरीर समझ कर कि ये अज्ञान है और ये ज्ञान है, या इससे आपको मुक्ति मिलेगी?
वास्तव में अगर देखा जाए, जैसे मेट्रोस की बात है, कि लोग बॉडी कॉन्शियस में इतना ज्यादा फंस गए हैं, उसके कारण सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। अंधकार मतलब और अज्ञान मतलब कि जो हमारे एक तो शारीरिक प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इतनी बीमारियां बहुत पहले नहीं थी, तो आज हो गई है मेंटल, हर चौथे व्यक्ति को डिप्रेशन होने वाला। ये अंधकार और अज्ञान की निशानी नहीं है तो और
आप
क्या?
स्वामी जी बताइए, अज्ञान का और क्या सिम्टम हो सकता है? डिप्रेशन ही एक कारण है या और कुछ भी इसका सिम्टम हो सकता है? उदाहरण की जो अज्ञानता की श्रेणी में रखा जाए और व्यक्ति सोचे कि नहीं, मैं शरीर समझ के काम कर रहा हूँ, तो ये ज्ञान का नहीं, अज्ञान का है।
जैसे ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, वो उसकी डिमांड करता है, नहीं मिलता है तो बेचैनी होती है उसको, वैसे इसमें आत्मिक एक शक्ति है, स्पिरिचुअल एक पावर है शरीर में जो संचालन करती है। वो अज्ञान अवस्था लोगों को होने के कारण ज्यादातर लोग ये पांच तत्व यानी सुखाकारी चीजें लाने के लिए दौड़ धाम करते हैं और पूरे बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, तो ये पूरी तरह से मिलते नहीं है, डिमांड बढ़ती जाती है तो अधूरापन उसको महसूस होता है, उसीलिए उसका जो स्टेबल माइंड होना चाहिए वो नहीं रहता है, तो उसके पूरे बॉडी में उसका असर होता है। माइंड पर होने के कारण पूरी बॉडी पे असर होता है और कई प्रकार के रोगग्रस्त भी मनुष्य हो जाते हैं।
मैं आपको सिंपलीफाई करूं?
जी हाँ, आप
सामाजिक
देखिए,
ये डिफाइन हो जाए।
मैं आपको सिंपलीफाई करके बताता हूँ, जो ज्ञान होता है उसका मतलब है कि जिंदगी में इंसान दुख से बच सके और सुख और शांति को पाए। तो आप इस डेफिनेशन से अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार के भी ज्ञान दुनिया में है, वैज्ञानिक ज्ञान है इत्यादि इत्यादि, क्या आज कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं दुख से मुक्त हूँ? अगर नहीं है, अशांति से नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने साधन वो अपना रहे हैं सुख शांति के, वो फेल हैं। तो यही अज्ञान है कि जो कुछ हम जानते हैं उसको बेस्ट करने के बावजूद भी हम दुखी हैं। तो अगर आप दुख से ही मुक्त नहीं हो सके या शांति से, तो ज्ञान काहे का? ये अज्ञान है एक प्रकार का। दूसरी बात है कि बहुत बड़ा इल्यूजन है कि लोग ये समझते हैं कि साधन इकट्ठे करने से वो सुखी हो जाएंगे। सुख के साधन होते हैं, धन सुख का साधन है, स्वास्थ्य सुख का साधन है, पुत्र सुख का साधन है, आयु सुख का साधन है, लेकिन ये सब चीजें भी डबल एजेड हैं। आपका पुत्र आपको सुख भी दे सकता, आपका नाम रोशन भी कर सकता और आपको मिट्टी में भी मिला सकता है। आपका धन आपका गला भी कटवा सकता और आपको सुख भी दे सकता है। तो जितनी ये वस्तुएं हैं इसके पीछे ये सिर्फ साधन है, वही साधन दुख के भी बन सकते हैं। तो पहला कन्फ्यूजन ये है कि लोगों ने साधनों को ही सुख मान लिया है। मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपया मेरे पास है, ये साधन है सुख का, लेकिन 1 करोड़ का मैं उपयोग नहीं करता, सिर्फ उसको देखकर मैं समझता हूँ मेरे पास 1 करोड़ है, तो उसका उपयोग नहीं करते।
नहीं।
दूसरी बात कि व्यक्ति की अपनी आत्मिक कर्मों के बगैर वो व्यक्ति किसी भी चीज से सुख नहीं पा सकता। सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन सुख पावत नहीं। पीछे आपके कर्मों की गति चाहिए। तो बेसिक बात यह है कि जब आत्मा नहीं मानेंगे तो कर्म को ठीक तरह नहीं कर पाएंगे, तो उनका विकर्म जमा हो जाएगा, फिर कुछ भी उनको कर दो। आज ऐसा नहीं, दुनिया में लोग नहीं है, स्टेटस वाले भी हैं, साधन वाले भी हैं, बुद्धि वाले भी हैं, मेहनती भी हैं, फिर भी दुख से मुक्त क्यों नहीं है?
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।
शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल,
ऐसे दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से।
फिर कुछ भी उनको कर दो। आज ऐसा नहीं, दुनिया में लोग नहीं है, स्टेटस वाले भी हैं, साधन वाले भी हैं, बुद्धि वाले भी हैं, मेहनती भी हैं, फिर भी दुख से मुक्त क्यों नहीं है? ये बात
देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल एक और सामने आ गया कि हमारे पास सब कुछ है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये शायद अज्ञान है। हम चलते हैं भोपाल, भोपाल के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आइए जानते हैं लोगों की राय।
इस समय हम खड़े हैं मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नजदीक भोपाल में। वैसे तो शिवरात्रि का पावन पर्व पूरे ही भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है, पर भोपाल में विशेष रूप से परमात्मा का यह पावन पर्व शिवरात्रि का अवतरण का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि का अवतरण का जो पावन पर्व है आप कैसे मनाते हैं?
जी, शिवरात्रि को पहली बार तो ये हम सारे दिन व्रत रखते हैं और इस दिन मंदिरों में हम लोग जाते हैं स्नान वगैरह करके, और बेलपत्र है, मधुरा है, बेर है, इत्यादि चीजें चढ़ाते हैं और शाम को आके फिर अपना उपवास भी रखते हैं।
जैसे कहा कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं, आज तक क्या कहना है?
परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, इसकी विशेषता ये है कि सभी अपने संस्कारों को, जो संस्कार हमारे जो बुरी आदतें हैं उसकी जाने बहुत कोशिश कर रहे, उसको परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि इसमें परमात्मा का बहुत बड़ा, बच्चों की इस तरह से टैकल करना उसके लिए बहुत सहयोग कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारा जो सब चीज़ आएगा।
आपका क्या मानना है, क्या इस धरती पर स्वर्ग आएगा?
जी हाँ, बिल्कुल।
जैसे कि हमने सभी की राय जानी कि परमात्मा का अवतरण इस धरती पर हो चुका है और परमात्मा अज्ञान अंधियारे को दूर करके सबके संस्कारों के परिवर्तन करके नए संस्कारों के साथ एक स्वर्णिम संसार की स्थापना कर रहे हैं। भोपाल से बीके रीना चीफ ऑफ माइंड से।
देखिए, जिस तरीके से लोगों ने अपनी राय रखी है उसमें ये बातें हैं, कई लोगों की तरह के सवाल हैं, इसमें दो तीन सवाल जो और भी हैं वो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग का चूंकि डिस्कशन महाशिवरात्रि पर हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि शरीर चलाने के लिए साधन चाहिए और साधन के लिए धनोपार्जन चाहिए, अब कह रहे हैं कि अज्ञानता है, धनोपार्जन करना है, लेकिन अब इस चीज को लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि इस अज्ञानता में कैसे वो करें कि वो उनको लगे कि नहीं ये अज्ञान में किया जा रहा है, ज्ञान में किया जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि अगर अज्ञान है, अज्ञान की रात्रि है, परमात्मा के आने का वक्त है, तो लोग कैसे इस चीज को समझ पाए कि नहीं सचमुच हम लोग घोर अज्ञान में हैं? क्योंकि लोगों का ही सवाल है कि धनोपार्जन तो चाहिए।
ऐसा है, हम धन को नकारते नहीं हैं, श्री लक्ष्मी धन की देवी है, लोग उसको पूजते हैं और सारे देवी देवताओं को सिर से पांव तक आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है। तो धन एक साधन है
जी।
लेकिन धन उपार्जन की तरीका है
जी।
दो तरीके हैं, एक तो गलत तरीके से उपार्जन किया जाए और एक ठीक तरीके से, तो सब समझते हैं
जी, जी।
तो जब व्यक्ति केवल धन कॉन्शियस हो जाता है तो गलत ठीक नहीं देखता, उसका धन उसको हानिकारक हो जाता है। ठीक है, हम उपार्जन के विरुद्ध नहीं, वो तो आवश्यक ही है, भीख मांग के थोड़ी खाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि लोग अज्ञान में हैं, उनको कैसे पता लगे?
ये
एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप गीता के सीन को सामने लाएं
जी।
तो आप क्या देखते हैं कि दो सेनाएं हैं, एक भगवान खुद बता रहा है, उसके साथ कितने लोग हैं
जी,
और जो उसको अपोज करने वाले वो कितने लोग हैं। तो आप क्या पाते हैं कि कौरव सेना बहुत बड़ी है
जी।
तो गीता के भगवान ने दो संपदा बताई हैं, एक दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा, दोनों के लक्षण गीता में स्पष्ट है
जी, जी।
आज की परिस्थिति में जिन लोगों को आप कह रहे हैं अज्ञान में हैं, वो सब आसुरी संपदा के लक्षणों से आभूषित हैं। उनको ये भी नहीं पता हिंसा किसको कहते हैं, स्वयं पर ही हिंसा कर रहे हैं। तो गीता के भगवान ने कहा है काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये हैं दुख के कारण, और जो व्यक्ति अज्ञान में होगा इसमें फंसा होगा। तो पहले हमने लोगों को ये रियलाइज कराना है, हालांकि भगवान ने भी रियलाइज कराया, कई कर पाए कई नहीं, क्योंकि कई जैसे दुर्योधन था, वो कहते हैं मुझे पता है ठीक क्या है गलत क्या है पर मेरी रुचि नहीं है। तो अगर किसी की रुचि नहीं है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड, यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक वाटर, वो अलग बात है। और ये तो सिद्ध है कि पहले भी भगवान ने कहा था कि कुछ विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति होने ही वाले हैं और उनकी संख्या ज्यादा है, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि थोड़े हैं, तो एक तो ये है, लेकिन जो प्रीत बुद्धि बनना चाहते हैं उनको आप ये बताए, हम ये बता सकते हैं कि देखो भाई तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो, दुख का कारण है तुम्हारा शरीर को मैं मानना और उससे ये पांच चीजें उत्पन्न होती हैं। तुम देख लो तुम्हारे जीवन में अगर कोई दुख है तो क्या इन पांचों के कारण है या नहीं है। आप किसी कोर्ट में चले जाइए, वहां किसी भी रजिस्ट्रार से पूछिए भी कितने मुकदमे हैं, तो आप पाएंगे एक भी मुकदमा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बाहर नहीं है। उसको सिद्ध कर सकते हैं, अपने जिंदगी में देख लो, फैमिली में देख लो, ये है। तो उनको जब ये रियलाइजेशन होगा कि ये है, अब छूटे कैसे, तो गीता का भगवान कहता है सर्व धर्मान परित्याज, ये सब चीजें जो तुम फॉलो करो, धर्म का मतलब होता है जो कोई फॉलो कर रहा है, क्या वो मटेरियलिज्म फॉलो कर रहा है, क्या संन्यास फॉलो कर रहा है, या भक्ति कर रहा है, उसको छोड़कर अब एक ही तरीका है कि आत्मा समझकर मेरे से योग लगाओ तो मैं तुम्हारा पिछला जो तुम्हारे संस्कार बने उसको भस्म करूंगा। ये लंबी बात है, सार इसका ये।
देखिए अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप देखते रहिएगा, रुक लौटते हैं, आप वापस कहीं जाइएगा। इस विशेष पेशकश में वापस आपका स्वागत है और हम वापस उस मुद्दे पर चलते हैं। तीन जो हमारे पास अहम सवाल हैं, देखिए हमारे पास समय की चूंकि सीमा है और जो सवाल की लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो तीन अहम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आम आदमी चाहता है क्योंकि अब उनको धैर्य की सीमा उनकी हट रही है कि नहीं पूछताछ करते, माला चढ़ाते, ये करते, उनको बहुत सारे समय बीत गए। इन तीन सवाल सारे ये हैं कि क्या अब अगर वो शिवरात्रि पर पूजा करते हैं तो क्या यह मान के चलें कि अज्ञानता की रात्रि है, परमात्मा आ चुके हैं, कैसे आएंगे, कैसे मिलन हो सकता है। दूसरा सवाल कि क्या जो अब तक वो पूजते आए, जो करते आए, क्या वो सही वे में था, नहीं था। और तीसरा एक सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि परमात्मा कब कैसे आएंगे और क्या लोग परमात्मा से मिल सकते हैं कि नहीं। इन तीनों सवालों का जवाब आपसे, इसलिए आप लोग एक एक करके इन सवालों का जवाब दे तो बता।
अभी तक जो शिवरात्रि की जो पूजा करते हैं, वैसे तो जो करते हैं लेकिन वो कर्म कांड के अनुसार नहीं करना चाहिए, उसके वास्तविक रहस्य को समझकर करना चाहिए। वैसे कई जो भक्त लोग भी होते हैं वो सच में डिवोशन से करते हैं तो ठगत से तो ठीक ही है, ये कम से कम भगत तो है, लेकिन अगर उसको वास्तविक रहस्य समझ कर किया जाए तो उससे सच में बहुत फायदा होगा। जैसे भाई साहब ने बताया कि धतूरा वगैरह, उसका भी रहस्य जानना चाहिए कि जो हमारे जो विकार हैं, क्यों हम बाकी देवी देवताओं को सिंहासन पर रखते हैं और परमात्मा शिव के जो मंदिर होते हैं वो जमीन पर होते हैं और हम उन पर कभी फूल नहीं चढ़ाते हैं, अर्धधतूरा चढ़ाते हैं, तो कितने रहस्य की बात है। ये समझना चाहिए कि परमात्मा को हम वास्तविक जो विकार हैं, वो विकार जो लेने आया है उसको हम दें। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकारों को अगर हम अर्पण करते हैं तो सही अर्थ में ये शिवरात्रि है।
आप बताएं कि कैसे अर्पण करेगा आदमी और किस तरीके से अर्पण करेगा कि नहीं वो परमात्मा को समझे और ये विकारों को चढ़ाए। वो
अभी तक तो ये मनुष्य ऐसी चीजें ही देकर चलते आ रहे हैं, ये धतूरा है, ये भांग है, ये सब देते आए हैं। लेकिन शिव ने तो बोला कि मेरा कोई आकारी रूप तो है नहीं, जो शिवालयों में हम शिवलिंग पर ये चढ़ाकर आ जाते हैं, मन को समाधान देते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा में जो पड़े हुए जो विकार है, जो अशुद्धियां है, उसको धतूरे के रूप में और ये भांग के रूप में हमको सही भावना से उसको उसी दिन उसी रात्रि को अर्पण कर देना चाहिए और उसको उससे मुक्ति पाना चाहिए। और अगर हम सही दिन से शिवरात्रि ऐसे भी मनाते आए हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो साक्षात्कार कराते हैं कि भोलेनाथ है, लेकिन वो परमानेंट साक्षात्कार की अनुभूति नहीं रहती है। अगर परमानेंट उसके साथ प्यार और अनुभूति चाहते है तो सही अर्थ में हम ये सारी चीजों जो काम क्रोध लोभ मोह जो ब्रिज मोहन भाई ने बताए, वो सही दिन से उसी रात्रि को अर्पण कर देना चाहिए, तभी हम उससे मुक्त होंगे और परमानेंट हमारा प्यार शिव भोलेनाथ से जुट जाएगा। उसका सही परिचय भी लेकर उसको अर्पण करना चाहिए।
आप बताइए कि क्या अगर कोई शिव से मिलना चाहे क्योंकि बहुत सारी बातें इन्हीं पर घूमती रही हैं कि नहीं ऐसा वक्त होगा परमात्मा आएगा, तो क्या सचमुच परमात्मा आ गया है? और अगर आ गया है, सारे आपने सिम्टम बता दिए कि परमात्मा के आने का सिम्टम है, इस स्थिति में परमात्मा आते हैं, ये कल्याणकारी है, ज्ञानता के, तो क्या परमात्मा आ गए? अगर आ गए हैं तो लोग क्या इस बार शिवरात्रि पर मिलन मनाएं, तो क्या परमात्मा से मिलन हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसकी विधि क्या होगी? आप लोगों को खुशखबरी।
ये भाई जी, ये क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा आपने पूछा है। हुआ ये है कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता भगवानो वाच, और उसमें लिखा हुआ है कि जब जैसे बड़े जलाशय को पाने के बाद छोटे की आवश्यकता नहीं रहती भगवान के ज्ञान, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि गीता को बहुत सारी बुक्स के साथ मिला के हम कहते हैं हमारे वेद शास्त्र उपनिषद पुराण गीता है, वन ऑफ द मेनी कर दिया। अब आप शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो हम शिवरात्रि को क्या एक्सक्लूसिव फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं या दशहरा दिवाली होली इत्यादि के साथ वन ऑफ द मेनी कर दिया? तो जब तक हम इस वन ऑफ द मेनी को सेपरेट करके एक्सक्लूसिव नहीं करेंगे तो शिवरात्रि मना नहीं सकते। अब क्वेश्चन ये है कि जो जैसे हमने लोगों ने आपको बताया है कि परमात्मा अलग है, वही गीता ज्ञान सुनाते, वही सच्ची शिवरात्रि आकर के रात्रि से दिन करते हैं
रात को। क्या आ गए
अच्छा,
परमात्मा?
तो इसलिए वास्तव में तो परमात्मा शिव कहते हैं कि अगर आप गीता को देखोगे, मेरे कहने की बात नहीं, जितने धर्म ग्लानी के चिन्ह वहाँ वर्णित हैं वो सारे आज मौजूद हैं, ठीक है। तो जब धर्म ग्लानी के चिन्ह मौजूद हैं तो गीता का भगवान सर्वशक्तिवान जिसने वायदा किया हुआ कि मैं इसको करूंगा तो जरूर आ गया है। अब प्रश्न यह है कि कैसे आ गया है, तो क्योंकि एक तो उन्होंने शिव और शंकर को मिला दिया
जी,
है
जी।
इसको बात को हमने डिस्कस नहीं किया कि शंकर महादेव को शिव से मिला दिया है
जी।
दूसरी बात, शिव श्री कृष्ण जी के रूप में नहीं आए, जन्म नहीं लिया, वो तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आते हैं। आप टोटली देखिए कि या तो गॉड को क्रिएटर कहा जाता है या ब्रह्मा को कहा जाता है, जिसको भिन्न भिन्न रूप से लोग एडम आदम आदिनाथ वगैरह सब धर्मों वाले कहते हैं। तो गॉड को भी सब धर्मों वाले मानते हैं और उसके फिजिकल क्रिएटर को भी सब धर्मों वाले मानते हैं। अब ये रहस्य तो शिव ही बताता है, खुद आते हैं कि मैं परमात्मा निराकार शिव ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में अवतरित होकर ज्ञान देता हूँ, और वो दे रहे हैं, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये जो ब्रह्मा कुमारी जिसके आप मेंबर हैं
जी, जी।
तो ब्रह्मा कुमारी का लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी कौन है, इसका मतलब क्या होता है, इनके सारे विश्व में सारे 137 देशों में केंद्र हैं, ये क्या चीज है? तो वास्तव में इस शिवरात्रि को अगर सचमुच किसी ने शिव को अच्छी तरह जानना हो, उनसे योग लगाना हो, उनसे प्राप्ति करनी हो, तो ये हम टीवी टॉक में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये खुशखबरी सुना सकते हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र पर जाओ, अच्छी तरह से इस बात को समझो, शिव को जानो, स्वयं को जानो, तो आपका अवश्य ही शिव मिलन हो सकता है। अगर 10 लाख भाई बहनों का शिव मिलन होकर वो विकारों से जीवन मुक्त हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? तो ये हम आपको खुशखबरी देते हैं
जी। हाँ, हम आज बात कर रहे हैं शिवरात्रि और परमात्मा अवतरण के संदर्भ में। जैसे सभी को पता है कि नेपाल में शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, यहाँ पे विश्व चर्चित पशुपतिनाथ का मंदिर है। आप बताइए, क्या धरती में सचमुच परमात्मा का अवतरण होता है?
होता है, ये यदा यदा धर्म ग्लानी होते रहती है तो मनुष्य के धर्म पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार होते भी, उस समय वो परमात्मा आना ही होगा, ये अवश्य आना ही होगा, ये हर मनुष्य का शांति सुख शांति देने परमात्मा का आना होगा।
परमात्मा का अवतरण धरती पे होता है, आपका क्या अनुभव है?
पूजा पाठ करते थे, व्रत आदि करते थे, एक स्त्री में है तो ममता का कहते थे मंदिर जाते थे पूजा पाठ करते, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ परमात्मा हुए हैं और उनका फीलिंग हम तक आए हैं, फीलिंग प्राउड, और ये लगता है कि उनका वो शक्ति हम लोग के पास है, ऐसा फील कर रहे हैं।
हाँ, सब कुछ रात्रि के समय में आते हैं, जब धरती में बहुत अपराध घृणा द्वेष उत्पन्न होती है, जब जब तैने अपराध बढ़ती है उसी को मिटाने के लिए भगवान धरती पर अवतरित होता है, जिसको हम मान्यता देते हैं मानव।
जी हाँ, यहाँ के लोगों से हमने जाना, परमात्मा सच में शिवरात्रि के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, सच में परमात्मा का अवतरण धरती में होता है, और यहाँ जितने भी लोगों से मैंने बात की उनका सबका अनुभव यही रहा है कि अज्ञान अंधकार के ये रात्रि के समय में, कलियुग की रात्रि के समय में परमात्मा का अवतरण होता है, और ये सभी परमात्मा ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं, और इसी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य भी चल रहा है। हमने बात की परमात्मा अवतरण और शिवरात्रि के संदर्भ में। पीस ऑफ माइंड चैनल के लिए लीना नेपाल।
देखिए, आज के इस जो डिस्कशन था, हमारे जो विशेष मेहमान थे, जो बातें निकल के आई है कि जो मनुष्य जो कर्म कांड करते आए हैं, अब उससे बाहर निकलने की जरूरत है और अपनी बुराइयों को परमात्मा पर अर्पण करने की जरूरत है, और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या परमात्मा से मिलन हो सकता है, ऐसा आपका मानना है, और सचमुच अगर आप चाहते हैं तो इसमें करने में कोई कोताही ना बरतें, कोई उसमें जिज्ञासा जरूर आप रखें, जरूर पालें, और मैं तो कहता हूं कि अगर ये बातें सामने आई हैं तो आप जरूर इसको एक बार परखें कि सचमुच परमात्मा का जो सिम्टम ने बताया था वो हो चुका है, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद अब भगवान इस दुनिया में अपना काम कर रहे हैं और आपको और हम सबको मिलकर अपनी बुराइयों को अर्पण कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, भ्रातृ मोहन जी आपका भी, स्वामी जी आपका भी, और डॉक्टर पुष्पा पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है, और फिर नई पेशकश के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।